हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका ने करण की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उनके डिज़ाइंस डिस्प्ले करेंगे तो उसके साथ साथ हमारी कंपनी का भी नाम होगा और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। इस शो की वजह से लोगों को हमारी कंपनी के बारे में पता चलेगा। शिविका की बात का समर्थन करते हुए अंकिता ने कहा, हाँ करण, मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके साथ हम अपनी कंपनी के डिज़ाइन को भी अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, तो हो सकता है वे भी लोगों की नज़र में आएं और कोई उन्हें खरीदे। शिविका ने करण को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ करण, हमें हर चीज़ में सकारात्मक पहलू देखना चाहिए कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, और फ़िलहाल मैं वही देख रही हूँ। दिव्या चुपचाप बैठी उन सबकी बातें सुन रही थी और सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने अब तक कुछ भी नहीं बोला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिविका करण को बॉस की तरह आदेश नहीं दे रही थी, बल्कि हर चीज़ में उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो भी कंपनी का मालिक या बिजनेस पार्टनर हो। वे सब आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन दिव्या अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। शिविका ने जैसे ही ये नोटिस किया, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ दिव्या, तुम भी कुछ बोलो, तुम्हें ये सब ठीक लगता है या नहीं? आखिर तुम भी हमारी डिज़ाइनिंग टीम की मुख्य सलाहकार हो, इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें भी इस मीटिंग में बुलाया है। शिविका की आवाज़ सुनकर दिव्या अपनी सोच से बाहर आई, क्योंकि वह तो इस वक्त कुछ और ही सोच रही थी और इस वक्त काम की तरफ तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने एकदम से चौंकते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा मतलब है हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है हमें ये शो आयोजित करना चाहिए, लेकिन अगर वे लोग हमें थोड़ा समय दें तो अच्छा होगा। शिविका ने एकदम बॉस वाले रवैये में आते हुए उससे पूछा, ज़्यादा समय किस लिए चाहिए, क्या आप कृपया समझा सकती हैं दिव्या? दिव्या भी अब काम के मूड में आते हुए बोली, ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें सारी तैयारी अच्छे से करने का समय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी ज्वेलरी को हाईलाइट करना है तो हमें मॉडल्स और ड्रेस उसी हिसाब से चुनने होंगे, और इन सब में समय तो लगेगा ना। दिव्या का ये विचार उन सबको अच्छा लगा और अंकिता ने कहा, इसके लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ डिज़ाइन फाइनल करने होंगे, क्योंकि अगर हमारी कंपनी ये शो आयोजित कर रही है तो हम सिर्फ क्लाइंट के डिज़ाइन को ही प्रदर्शित नहीं करेंगे, उसके साथ हम अपने डिज़ाइन को भी डिस्प्ले पर लाएंगे, और हाँ, अच्छे मॉडल्स को भी नियुक्त करना होगा। इतना बोलते हुए अंकिता ने शिविका की तरफ देखा उसका जवाब जानने के लिए। अंकिता और दिव्या की ऐसी नज़रों का मतलब समझते हुए शिविका बोली, हाँ ठीक है, कल मैं साहिल मिस्टर मेहरा से मिलने जा रही हूँ और तब मैं उनसे बात करके अपने हिसाब से समय ले लूँगी, लेकिन तुम सब बताओ कि लगभग कितना समय चाहिए तुम लोगों को तैयारियों के लिए। वे तीनों लड़कियाँ आपस में ही ये सारी बातें चर्चा कर रही थीं और करण को अभी ज्वाइन किए हुए 2-3 महीने ही हुए थे, तो उसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब से उसने ज्वाइन किया था तब से इस तरह का कोई भी शो वहाँ डिज़ाइनिंग हाउस में नहीं हुआ था। इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ उन सब की सारी बातें सुन रहा था और समझने की कोशिश करते हुए काफ़ी कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे सब कुछ नया पता चल रहा था। ये सारी जानकारी उसके लिए एकदम नई थी, लेकिन उसे पता था कि सब भविष्य में उसके काम आने वाला है। शिविका के सवाल पर अंकिता और दिव्या ने आपस में चर्चा करते हुए कहा, मैम आई गेस 1 महीने का समय कम से कम इतना तो लगेगा ही अगर हमें एक अच्छा और सफल शो आयोजित करना है तो। उन दोनों की बात सुनकर शिविका ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता वे हमें इतना समय देंगे, 15 दिन या फिर 1 हफ्ता ही मिलेगा हमें, बस इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। शिविका ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि वह इतने दिनों की मीटिंग और बिजनेस डील में साहिल को जान गई थी। वह हर चीज़ की जल्दबाजी में रहता था और किसी भी काम के लिए सब्र करना उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसने लड़कियों को भी इस बारे में बता दिया। दिव्या ने इतनी कम समय सीमा सुनकर थोड़ा घबराते हुए कहा, ओके मैम, बट एटलीस्ट आप उनसे बात करके 15 दिन का वक्त तो मांगिएगा, क्योंकि 1 हफ्ते में हमें नहीं लगता ये सब हो पाएगा। उन दोनों की बात सुनकर करण बोला, तुम लोगों को किस लिए 15 दिन का समय चाहिए, इतना भी समय नहीं लगता। तुम लोग इसलिए समय ज़्यादा मांग रही हो क्योंकि तुम सब आलसी हो और अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं करती, और अगर ठीक से काम करोगी तो 1 हफ्ते का समय भी बहुत है इस प्रोजेक्ट के लिए। करण के ये बात बोलने पर शिविका काफ़ी गर्व से उसकी तरफ देख रही थी और उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने इस तरह उसकी बात का समर्थन करते हुए कंपनी के लिए अपना पक्ष रखा। इतनी देर में पहली बार ही करण बोला और वो जो कुछ भी बोल रहा था वो सब एक तरह से सही था, क्योंकि ऑफिस में सारे ही लोग बहुत ढीले कामचोर थे और ठीक से अपना काम नहीं करते थे, और इस वजह से समय पर कई प्रोजेक्ट भी खत्म नहीं हो पाते थे और 2-4 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता था। जब किसी भी काम या प्रोजेक्ट में देरी होती थी तो इस बात के लिए शिविका उन लोगों पर चिल्लाती भी थी, लेकिन उन सबके पास ही कुछ ना कुछ बहाने होते थे और आखिर में उन सब लोगों को आपस में समझौता करना होता था, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं कंपनी और उसकी प्रतिष्ठा पर पड़ता था। शिविका ने उन दोनों लड़कियों को आदेश देते हुए कहा, अब हम इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ही सब लोग अपनी प्राथमिकता समझो और पूरे स्टाफ के साथ मिलकर इस पर काम करो, जिससे कि हम इसे समय से पहले ही पूरा कर पाएं। दिव्या ने पूछा, तो क्या पिछले और इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब छोड़कर हमें इस पर काम करना है, और जो नए डिज़ाइन अभी प्रक्रिया में हैं उन्हें भी हम रोक दें? दिव्या के सवाल का जवाब देते हुए शिविका बोली, नहीं, इसके लिए 2 टीमें बनाओ और एक टीम में बाकी सारे लोग होंगे, सिर्फ नेहा, रमन और रजनी को छोड़कर। वे लोग अपना काम करेंगे, मैं डिज़ाइन पर काम और अंकिता उन लोगों की सुपरवाइज़र रहेगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। अंकिता ने कहा, ओके मैम, हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। शिविका ने कहा, हाँ अंकिता, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। वे दोनों ही वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगीं, लेकिन दिव्या ने फिर कुछ नहीं बोला और उसने सिर्फ दरवाजे से बाहर जाते हुए पीछे मुड़कर करण को घूर कर देखा। करण ने भी उसे इस तरह से घूरते हुए नोटिस किया, लेकिन उसने फ़िलहाल उसे पूरी तरह से अनदेखा किया और शिविका की तरफ देखते हुए उसी से बातें करने लगा। करण के इस तरह उसे अनदेखा करने पर दिव्या का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए केबिन से बाहर निकली, जबकि अंकिता अब तक वहाँ से काफ़ी आगे जा चुकी थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, ज्ञान तो ऐसे दे रहा था जैसे कि उसकी अपनी कंपनी है, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इस तरह के सब शिविका की सह का नतीजा है, वह उसे सर पर बिठा कर रखती है। इतना बोलते हुए वह आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसे इस तरह गुस्से वाले चेहरे के साथ कुछ सोचते हुए देखकर निधि उसके पास आई और बोली, अरे दिव्या, क्या हुआ, काफी गुस्से में लग रही हो, बॉस ने डांटने के लिए बुलाया था केबिन में, लगता है तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगी है आज, और अंकिता मैम भी काफी सीरियस लग रही हैं, लगता है उन्हें भी कुछ सुनने को मिला है।
निधि ने उसकी फिक्र करने से ज्यादा उसका मजाक उड़ाते हुए ये बात बोली तो दिव्या ने लगभग खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर डांट पड़ेगी जो बार बार अपना काम छोड़कर इस तरह दूसरों की डेस्क पर मंडराती रहती हो या फिर करण के आगे पीछे घूमती रहती हो, कभी अपना काम भी कर लिया करो ढंग से। दिव्या को इस तरह चिल्लाते हुए सुनकर निधि ने कहा, ओ हो दिव्या, तो मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे डांट नहीं पड़ेगी, तुम्हें जरूर डांट पड़ी है और इसीलिए तुम इतनी निराश लग रही हो। निधि की बात सुनकर दिव्या के बगल वाली सीट पर बैठी हुई ज्योति बोली, हाँ दिव्या, निराश तो तुम लग रही हो, जरूर कुछ तो बात है, बस हमें नहीं बता रही हो शायद। निधि ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं भी तो यही कह रही थी। निधि के इतना बोलने पर वे दोनों एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हुए हंसने लगीं और इस वक्त वे दोनों दिव्या का अच्छा खासा मजाक उड़ा रही थीं। दिव्या को भी वो सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो उनकी ऐसी हरकत पर सिर्फ किलकिला रही थी और कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उन लोगों को इशारा देते हुए बोली, मैं केवल कुछ भी बताऊं, तुम लोगों को अभी खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके लिए हमें ज्यादा समय ही नहीं मिलेगा और जब दिन रात काम करना होगा तो ये सारी हंसी गायब हो जाएगी। दिव्या की ये बात सुनकर उन दोनों का हंसना एकदम ही बंद हो गया और कुछ देर बाद ही अंकिता ने सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उन सबको इस शो के बारे में बताया, क्योंकि वो शो होना तो पक्का ही है और शिविका भले ही अगले दिन साहिल से मिलने जाएगी, लेकिन वो सब कुछ बस एक औपचारिकता ही है, क्योंकि उन लोगों ने आपस में पहले ही इस बारे में बात करके फाइनल डिसीजन ले लिया है। अंकिता की बात सुनकर सभी एकदम सीरियस हो गए अपने काम को लेकर और अंकिता ने उन सबको ये भी कहा कि सारे लोग इसमें एक साथ ही काम करेंगे, सिर्फ नए डिज़ाइन बनाने वाली टीम को छोड़कर। उसके बाद अंकिता ने आगे कहा, न्यू डिज़ाइनिंग टीम में नेहा, रमन और रजनी होंगी, तुम्हारी टीम भी है, तुम्हें पहले की ही तरह कंपनी के लिए नए डिज़ाइन बनाने पर काम करना है और ये फ़िलहाल होने वाले इवेंट पर हम बाकी सारे लोग मिलकर काम करेंगे। उन सब लोगों ने ध्यान से अंकिता की बातें सुनी और वे तीन लोग जाकर एक साथ बैठ गए और बाकी सारे लोग इस नए शो पर काम करने के लिए एक साथ ग्रुप बनाकर ही बैठ गए और फिलहाल कोई भी इधर उधर की बातें और लापरवाही नहीं कर रहा था। शिविका ने अपने केबिन से बाहर उन सबको काफी गंभीर होकर काम करते हुए देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। वो सब कुछ नोटिस करके शिविका ने करण की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ही ये सब लोग इतना गंभीर होकर काम कर रहे हैं। काफी अच्छे से क्लास लगाई तुमने उन दोनों की, आई एम इम्प्रेस्ड। इस पर करण मुस्कुराते हुए बोला, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। आखिर तुम इतनी स्ट्रिक्ट बॉस हो, इन सबके पास कोई और विकल्प कहाँ है। करण की बात सुनकर शिविका ने भी हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने काम में लग गई। क्रमशः